Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana, Narayana, Narayana. Shrotriya Brahmanishtha. प्रातस्मरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप मधुबाबू तिजोरी वाला जी समस्त पवित्र आत्मा परम भक्तगण श्रोतागण साधकगण प्रथम वल्ली में बालक नचिकेता ने एक बड़ी सुंदर बात कही एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व की नायमस्तिति चैके। उन्होंने कहा मनुष्य लोग में यह विचिकित्सा होती है, चिकित्सा होती है, विशेषण चिकित्सा। चिकित्सा का अर्थ होता है विचार विमर्श, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नीति क्या है, अनीति क्या है, परमात्मा है या नहीं है, ये सारी चीजें यहां पर बैठकर विचार किया जाता है बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, उसको बोलते चिकित्सा। और ये विचिकित्सा माने विशेष रूप से कितने बड़े बड़े लोग इस पर विचार करते हैं, जो समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, साधक सिद्ध ज्ञानी मुनि जो भी धर्म विचार करते हैं वो कोई सामान्य लोग नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी विद्वान। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, इस मनुष्य लोग में जैसे परम पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ये उत्तम लोग हैं, ये मनुष्य लोग हैं, उत्तम लोग हैं। ये केवल मनुष्य के शरीर में ही, मनुष्य जाति में ही, मनुष्य समुदाय में ही विचार होता है। धर्म मर्यादा संस्कृति सत्य असत्य आत्मा अनात्मा का विचार केवल मनुष्य जीवन में है। बालक नचिकेता ने मनुष्य कहकर इस मनुष्य जीवन के महत्व का द्योतन किया। उनकी जो अभिव्यक्ति है ये जिज्ञासु की अभिव्यक्ति है। तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक और तीसरा जिज्ञासु। आस्तिक का अर्थ होता है अस्ति इति मतिर यस्य स आस्तिकः। परमात्मा है अस्तित्व के प्रति जो गहरा विश्वास है उसको बोलते हैं आस्तिक। ये केवल विश्वास है, आस्तिकता विश्वास जन्य श्रद्धा जन्य है। जो आदमी जितना श्रद्धावान होगा विश्वासवान होगा वो उतना आस्तिक होगा, अनुभूति नहीं होगी उसके मूल में, केवल श्रद्धा। और जहां श्रद्धा है वहां प्रत्यक्ष की पहुंच नहीं है। जहां प्रत्यक्ष हो जाए वस्तु इंद्रियों का विषय बन जाए वहां श्रद्धा की कोई जरूरत नहीं है, श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। परोक्ष विषय इंद्रियातीत जहां हमारी पहुंच नहीं, सामान्य व्यक्ति की पहुंच नहीं है, ऐसे पदार्थ के विषय में ही श्रद्धा होती है। और ऐसे पदार्थों के विषय में ही श्रद्धा चरितार्थ है। आपको मैं देख रहा हूं ये प्रत्यक्ष है, ये श्रद्धा थोड़ी है। मेरे शब्द आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवणजन्य ज्ञान के विषय हैं। शब्द आपके कान में पड़ रहे हैं और आपकी कान इन शब्दों की सूचना दे रही है बराबर की, इसको आप श्रद्धा थोड़ी कहेंगे, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। आप चख रहे हैं, आपको स्वाद मालूम पड़ रहा है, ये खट्टा है मीठा है, इसमें श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धाजन्य ज्ञान नहीं है, ये इंद्रियजन्य ज्ञान है। और जो इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष विषय होते हैं वहां श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। आस्तिकता श्रद्धाजन्य है, अनुभूति नहीं है, केवल मान लिया कि ईश्वर है, कोशिश नहीं की, कोई प्रयत्न नहीं, साधना केवल उसके अस्तित्व पर जो श्रद्धा है और उस श्रद्धा को प्रबल बनाने के लिए। एक सामान्य व्यक्ति जो भी साधना करता है अपनी आस्तिकता को प्रबल बनाने के लिए, उस विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, बहुत गहरी से गहरी साधना भी करेगा एक आस्तिक आदमी, तो अपनी आस्तिकता को मजबूत बनाने के लिए, आस्था को मजबूत बनाने के लिए वो गहरे से गहरे तर्क भी देगा, युक्ति भी देगा, तो आस्तिकता के बारे में वो बोलेगा परमात्मा है, भले ही मेरे अनुभूति का विषय नहीं है, भले ही मैंने नहीं देखा उसको, लेकिन वो परमात्मा है। और नास्तिक व्यक्ति नास्तिकता पर विश्वास करता है, उसकी नास्तिकता भी श्रद्धाजन्य है। किसी आदमी ने थोड़ी देखा, जो नास्तिक हैं ईश्वर के आत्मा के अस्तित्व पर जो भरोसा नहीं करता है, क्या उस आदमी ने ईश्वर की नास्तिकता ईश्वर का नहीं होना देखा है? क्या उसकी अनुभूति का वो विषय है? नहीं है, वो भी मानता है ईश्वर नहीं है, और अपने नहीं होने के भाव को पुष्ट करने के लिए तर्क और युक्तियों का वो सहारा लेता है, ईश्वर नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है, ईश्वर का नहीं होना अनुभूति नहीं, न्याय शास्त्र में नहीं होने की भी अनुभूति मान ली जाती है, नहीं होना भी मालूम पड़ता है। जैसे आप खोजते हैं यहां कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, आदमी का नहीं होना भी आंख से मालूम पड़ता है और होना भी आंख से मालूम पड़ता है। आप चारों ओर दृष्टि डालेंगे, आदमी का होना मालूम पड़ता है, होने के साथ हमारी आंख जुड़ जाती है। ऐसे ही न्याय शास्त्रकार कहते हैं नहीं होने के प्रति भी हमारी आंख जुड़ जाती है, मालूम पड़ता है हम देख रहे हैं नहीं है, नहीं होना मालूम पड़ा। ऐसे ईश्वर का नहीं होना हमें मालूम होने के लिए हमने प्रयत्न क्या किया? बिना प्रयत्न, बिना इंद्रिय, बिना श्रम हम उसके नहीं होने को भी कैसे जानेंगे? और बिना श्रम, बिना साधना, बिना खोज हमने ईश्वर के नहीं होने को बोल भी दिया, निर्णय पर पहुंच भी गए ईश्वर नहीं है, तो ये भी एक मान्यता है, ये भी एक श्रद्धाजन्य है। इसलिए आस्तिकता भी श्रद्धाजन्य है और नास्तिकता भी श्रद्धाजन्य है। कितना भी बड़ा नास्तिक हो और वो भगवान के आत्मा के नास्तित्व को सिद्ध भी कर दे शब्दों के द्वारा, वो श्रद्धाजन्य होगा। और जो श्रद्धा है वो विश्वास है। लेकिन एक तीसरा भी व्यक्ति है जो परमात्मा के अस्तित्व अथवा परमात्मा के नास्तित्व पर भरोसा नहीं करता है, वो आस्तिक नहीं है। और जो नास्तिक भी नहीं है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, सोच, तर्क, युक्ति केवल खोज पर आधारित है, संभावनाओं पर जो जीता है उसको बोलते जिज्ञासु। आस्तिक होने, नास्तिक होने की अपेक्षा आस्तिक होना श्रेष्ठ है, और आस्तिक से भी श्रेष्ठ होना जिज्ञासु होना है। आस्तिकों की कमी नहीं है और नास्तिकों की भी कमी नहीं, करीब करीब बराबर मान लीजिए। लेकिन आस्तिक होना इससे भी परे की घटना, बहुत दुर्लभ घटना है जिज्ञासु होना, मुमुक्षु होना, साधक होना। एक साधक, एक जिज्ञासु ये नहीं बोलेगा कि परमात्मा है, और वो ये भी नहीं बोलेगा परमात्मा नहीं है, ये बहुत अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। परमात्मा है कहना भी बिना खोजे बिना जाने, परमात्मा नहीं कहना भी बिना खोजे बिना जाने, ये बहुत अवैज्ञानिक घटना है, ये बहुत ही अतार्किक सोच है। इसलिए जिज्ञासु साधक बोलेगा कि वो हो सकता है, आज वो हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है। जो बिना खोजे कैसे माने, बिना खोजे हम कैसे कहें कि वो है, और बिना खोजे हम यह भी कैसे कहें कि वो नहीं है। इसलिए बालक नचिकेता का जीवन संदिग्ध है, ध्यान दीजिए, बालक नचिकेता का जीवन संदेहशील है। बालक नचिकेता किसी निश्चय पर नहीं जीते हैं, निश्चय पर जीना बहुत सुखद है, निश्चय पर जीना बहुत सुखद है, और वहां कोई श्रम नहीं, अंतर्द्वंद नहीं है, परमात्मा है, निश्चय है, विश्वास है, विश्वास ने निश्चय को जन्म दिया, ईश्वर है, आत्मा है, अब कोई तकलीफ नहीं है, आराम से सो रहे हैं हम, वो है, कोई अंतर्द्वंद नहीं है, नहीं है, नहीं के विश्वास पर हम टिके हुए हैं, तो भी कोई अंतर्द्वंद नहीं है, और कोई समस्या भी तो नहीं है। उसका जो निश्चय है, न वो हमारे खाने में बाधा है, न सोने में, न हमारे आचरण करने में, लेकिन जो निश्चय में नहीं है, संदेह में जी रहे हैं, बालक नचिकेता। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, मीरा, हमें निश्चय है, मीरा को निश्चय नहीं है, मीरा खोज नहीं है, निश्चय, निश्चय होगा तो खोजेगा कैसे वो, मीरा खोज नहीं परमात्मा को, चैतन्य महाप्रभु परमात्मा को खोज रहे हैं। विवेकानंद जी नरेंद्र के रूप में परमात्मा को खोज नहीं, आज बालक नचिकेता खोज रहे हैं, ये खोज ही सिद्ध करती है। अभी मालूम नहीं वो कैसा है, किस रूप में है, इसलिए संदेहशील होना बहुत बड़ी बात है। निश्चय में जीना बहुत सरल है, संदेह में जीना बहुत दुखद है। हमें मालूम है ये शरीर हम हैं, पक्का भरोसा है, ये शरीर हम हैं, पक्का भरोसा है, लेकिन किसी दिन मालूम हो जाए आपको ये शरीर का होना संदिग्ध हो जाए, हम तो हमेशा रहते हैं, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, तो हम कौन है फिर, ये शरीर तो मर जाता है, बच्चे थे जवान हो गए, जवान हैं बूढ़े हैं, बूढ़े होने के बाद मरेंगे तो कौन मर रहा है, आत्मा तो अजर अमर है, ये शरीर तो मरता है, तो हम कौन है फिर। आपने सुना वासांश जीर्णानि यथा विहार, भगवान ने कहा वस्त्रों की तरह हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, मालूम पड़ा, मालूम पड़ा, सत्य मालूम पड़ा, सुना नहीं, हम तो सुनते हैं, मालूम होना अलग बात है, निश्चय में जाना, निश्चय में प्रवेश करना बिल्कुल अलग बात है। आप कल्पना कीजिए शरीर का होना संदिग्ध हो जाए, मैं शरीर हूं कि नहीं, अभी तो निश्चय में जी रहे हैं, यदि संदेह निर्मित हो जाए तो हम बेचैन होंगे, सत्य को जानने के लिए बेचैन होंगे, फिर हम कौन हैं, हमारी अस्तित्व क्या है। बालक नचिकेता का जीवन यही है, इसलिए उन्होंने बहुत गहरे संदेह को व्यक्त किया। या संदेह में दो कुटियां होती, अस्तित्व और नास्तिकता, होना और नहीं होना। भगवान ने गीता जी में एक बड़ी सुंदर बात कही है, संशय आत्मा विनश्यति, अध्यात्म का मूल आधार संदेह है, संदेह के बिना साधक नहीं है, संदेह के बिना साधना का प्रारंभ नहीं है। और भगवान ने गीता जी में कहा संशय आत्मा विनश्यति, इसको संगति कैसे लगाएंगे। भगवान ने उसके पहले शब्द प्रयोग किए हैं, दो शब्द हैं, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है अज्ञानी मने जिसमें अपनी दृष्टि का अभाव है, अपने सोच का अभाव है, जो स्वयं देख नहीं सकता है, स्वयं सोचकर किसी निर्णय पर पहुंचने की क्षमता उसमें नहीं है, वो अज्ञानी। और दूसरी अश्रद्धाधार, दूसरे पर भी श्रद्धा नहीं, दूसरे के विचारों का भी समर्थन नहीं, दूसरे के ज्ञान पर भरोसा नहीं है, समझ गए, स्वयं का विवेक नहीं और दूसरे के विवेक पर भरोसा नहीं। भगवान ने कहा फिर संदेह है विनश्यति। संदेह है लेकिन स्वयं विचार के द्वारा सत्य तक पहुंचने का सामर्थ्य है। भगवान ने कहा न विनश्यति, वो रास्ता खोजेगा, वो स्वयं की क्षमता है, उसमें सोच की विचार की, भले ही संदेह हुआ लेकिन साधना करेगा, सोचेगा, सत्य तक पहुंचेगा। ऐसा आदमी भगवान ने कहा कभी न विनश्यति, वो समाप्त तो नहीं होगा, वो खोज लेगा, अपने संदेह को मिटा लेगा, निश्चय को पा लेगा, अथवा अपना स्वयं निर्णय का सामर्थ्य तो नहीं है लेकिन शास्त्रों पर श्रद्धा है, गुरु के वचनों पर श्रद्धा है, लेकिन संदेह है। जब विवेकानंद जी महाराज रामकृष्ण परमहंस के पास गए, बिना श्रद्धा नहीं गए, बिना विश्वास नहीं गए, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उन्होंने संदेह ही व्यक्त किया, एक अर्धनास्तिक की तरह ही प्रस्तुत हुए। सारे लोग पहुंचते थे, बहुत सारे लोग जाते थे रामकृष्ण परमहंस के पास, और वो जाके उन्हें भगवान की तरह प्रणाम करते और वो ऐसा विश्वास करते थे कि आप भगवती को देखने साक्षात भगवान का साक्षात्कार किए हुए आप हैं। लेकिन विवेकानंद जी महाराज ने ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा है, वो है कि नहीं है, श्रद्धापूर्वक संदेह। भगवान ने कहा कि विश्वास है, विश्वास की दृष्टि है, सत्य पर, शास्त्र पर, गुरु पर विश्वास है, और आप संदेह भी कर रहे हैं, गुरु पर भी संदेह कर रहे हैं विश्वास के साथ, ये बड़ी बात है, विश्वास के साथ संदेह कर रहे हैं। बोले आप वो संदेह आप पार कर लेंगे, निश्चय तक पहुंच जाएंगे, न विनश्यति। ये भगवान का वचन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज संदेह आत्मा, संशय आत्मा है बालक नचिकेता, और उन्होंने प्रस्तुत भी कर दिया अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके। कुछ लोग कहते हैं मेरा मत नहीं है, ये है परमात्मा है, कुछ लोग बोलते हैं अस्तित्व इति एके ऐसा बोला है उन्होंने, मैं नहीं बोलता हूं, उन्होंने अपने को प्रस्तुत नहीं किया है, उन्होंने अस्ति इति ये ममामति नहीं है, एके कुछ लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों से सुना वो परमात्मा है, और नास्तित्व के नायम अस्ति इति, बोले ये भी मेरा मत नहीं है, परमात्मा नहीं है, यह भी मेरा मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, अब दोनों मत पर उनकी आस्था नहीं है, यही बालक नचिकेता की बहुत गहरी दृष्टि है। आज से हजारों वर्ष पुराने आपके उपनिषद, और उपनिषद में ये बात बोली जा रही है, इसलिए हमारे यहां कितनी स्वतंत्रता है, सोच की स्वतंत्रता और अपने निश्चय के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। माने एक 5 वर्ष का बालक बोल सकता था ईश्वर है ये मेरा मत नहीं है, और नहीं है यह भी मेरा मत नहीं है। मैंने हमारे यहां पर विचारों की कट्टरता कभी नहीं रही, अंधविश्वास को समर्थन हमने कभी नहीं दिया। आज बालक नचिकेता एक बहुत उज्जवल दृष्टि प्रस्तुत कर रहे हैं, और कोई भय भी नहीं है। बालक नचिकेता को अपने अंतर मन के संदेह को ईश्वर के अस्तित्व विषयक अंतर मन के संदेह को व्यक्त करने के लिए कोई भय नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता, उल्टी पूर्ण स्वतंत्रता। इसलिए श्रुति ने कहा ये श्रुति मूलक है, ये संदेह अभिव्यक्तिकरण श्रुति मूलक। श्रुति ने कहा आत्मा वरि श्रोतव्यो, सुनो, सुनने के बाद अंधे की तरह धारण मत करो, सुनने के बाद उसको अंधे की तरह धारण नहीं करना है। तो बोले मनन करो, जो कहा जा रहा है वो कैसे हैं, क्या है, सत्य तक पहुंचने में समर्थ है कि नहीं, वो चीज क्या है। ये मन जो है ना, ये मननशील, और जो मन है वो संदेहशील होता है, मन हमेशा संदेहशील होता है। आप पढ़ते हैं वेदांत के प्रारंभिक ग्रंथों में ही पढ़ते हैं, मन का अर्थ है संदेह, मन की ही परिभाषा है, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये संकल्प और विकल्प, ये संकल्प विकल्प ही मन का स्वभाव है। मने न संकल्प स्वभाव है और न विकल्प है, ये दोनों के बीच का, ये मन माने डावाडोल स्थिति है, ये मन की स्थिति जो है ना डावाडोल है, अंतर्द्वंद्व है, मन का ही अर्थ है अंतर्द्वंद। किसी निश्चय पर पहुंचने का नाम मन नहीं है, आप दो में हैं, दो कोटियों में हैं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, आत्मा अनात्मा, ये दो कोटियों में अंतर्द्वंद्व में ये मन स्थिति है। इसलिए मन अर्थ संदेह, बोले संदेह करो, विचार करो, सत्य क्या असत्य क्या है, ये मनन बोलते इसको। और एक निर्णय तक पहुंचाने के लिए संदेह बहुत जरूरी है, एक सत्य के निर्णय तक पहुंचने के लिए विचार बहुत जरूरी है, सत्य और असत्य का विचार। जैसे आप इसको बोलते खूंटा गाड़ते हैं, और खूंटा गाड़ने के बाद उसको हिला के देखते हैं आप, थूली खनन अन्याय। शास्त्र ने कहा कि जहां आप खूंटा गाड़ते हैं, ठोकते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, और जैसे हिलता है तो फिर ठोकते हैं, आप तब तक उसको ठोकते रहते हैं जब तक वो हिलना बंद न हो जाए। शास्त्र ने कहा कि आप मनन करो, कब तक, जब तक वो मन निश्चय में न बदल जाए, मन अपने अंतर्द्वंद्व को न खोए। जो दो की स्थिति है, द्वंद्व की, द्वैत की, वो खो जाए तब तक मन को मनन करना चाहिए। और निश्चय में पहुंच गए हम एक चीज पर, अब अंतर्द्वंद्व समाप्त हो गया, अब द्वैत समाप्त हो गया मन का, निश्चय हुआ मैं आत्मा, ये शरीर मेरे से अलग है, ये सारी जो दुनिया है ये मन एव, मन का भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है, स्वप्न है, बस अब अंतर्द्वंद्व मिटा, अब स्थिर हो जाओ, बस अब स्थिर, अब जो स्थिति है इसको स्थिति बोला है। ये जो बुद्धि है ना, एक स्थिति है, आत्मस्थिति है, एक निश्चय है, वहां अंतर्द्वंद्वता नहीं है, वहां द्वैत नहीं है, तभी तो आत्म साक्षात्कार में प्रवेश करेंगे। आज बालक नचिकेता ने मन की बात बोली है, अंतर्द्वंद्व की बात, और पूर्ण स्वतंत्रता, आपको शास्त्र पूर्ण स्वतंत्रता देता है, दुनिया में इतनी स्वतंत्रता, विचारों की इतनी स्वतंत्रता किसी भी धर्म में नहीं है। आप वहां ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह भी कर दे तो वहां अपराध माना जाता है, अन्य धर्मों में केवल अस्तित्व पर संदेह उठाना, विचार की तो बात ही छोड़ो, वहां बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन यहां तो अध्यात्म का प्रारंभ है, यहां अध्यात्म का प्रारंभ है नारायण, इसलिए यहां बालक नचिकेता ने अपने अंतर मन की बात कही, और अंतर मन की बहुत गहरी बात। ये सूत्र यदि हम समझ ले ना तो कठोपनिषद समझ में आ गया, अस्तित्व के नायम अस्तिति चय के एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया। बालक नचिकेता ने कहा एतद् विद्याम, इसको मैं जानना चाहता हूं, इसी सत्य को मैं जानना चाहता हूं। और उन्हें यहां तक रुके नहीं, वो अनुशिष्टः त्वया। बोले मैं शरणागति को भी स्वीकार करता हूं, मैं इसका मूल्य चुकाने के लिए भी तैयार हूं। पाना है सत्य को, जानना है तो मूल्य भी तो चुकाना होगा। बिना मूल्य चुकाए आप पा भी ले उसका क्या मूल्य है? वस्तुतः उसका कुछ भी मूल्य नहीं, जिसको पाने में आपको कुछ भी मूल्य चुकाना न पड़े। वस्तुतः वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। यदि हम उसको बिना मूल्य ले, ज्ञान का भी तब मूल्य है जब मूल्य चुका के ले। आपको किसी ने पुस्तक भेंट की, बहुत कीमती है, 1000 रूपये की, और यूं आपको प्रसाद के रूप में बांट दी, संभावना तो यही है वो पुस्तक आपके घर तक नहीं पहुंचेगी। संभावना है आप रास्ते में किसी को दे भी दे, हो सकता है रिक्शा चालक को ही दे दे, बड़े उदार होकर बोले भैया पढ़ो या अध्यात्म का प्रचार कर रहे हो। लेकिन वो पुस्तक 1000 की आपने मुश्किल से 200 रूपये में खरीदी है, अब वो पुस्तक आपके घर तक पहुंचेगी कि नहीं? और घर में जाने के बाद वो पुस्तक आप अपने बच्चों के हाथ में देंगे क्या? नहीं देंगे। आप बोलेंगे 200 रूपये दिए हैं इसको, आप कपड़े में बांध के ऊपर रखेंगे सुरक्षित, आपको पुस्तक नहीं दिखाई देगी, आपको 200 रूपये दिखाई देंगे, वो मूल्य दिखाई देगा। पुस्तक का कोई मूल्य नहीं है, जो हमने चुकाया मूल्य 200 रूपये उसका मूल्य है। परमात्मा भी मिल जाए बिना मूल्य आप क्या करेंगे उसको? उसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत उच्चतम ज्ञान भी मिल जाए हमें उसका भी कोई मूल्य नहीं है, और जिसका मूल्य ही नहीं वो आश्चर्यजनक बनता है। जो विचार हमें फुकट के मिले उस विचारों का भी क्या मूल्य? लेकिन जो विचार आपने मूल्य चुका के पाए उन विचारों का भी बहुत बड़ा मूल्य है। एक बार इंदौर में मैंने बाल संस्कार शिविर लिया, वो इंदौर का पहला शिविर था, इतना बड़ा, 250-300 बच्चे थे, ये 2001 की बात है। उसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्च किए थे लोगों ने। हमने कहा प्रत्येक बच्चों से 50 रूपये लेना, लोगों ने कहा कि एक एक बच्चों पर हम 300-400 रूपये खर्च करने हैं, हम 50 रूपये क्यों ले? हमने कहा कि उसका मूल्य नहीं है, आप 50 रूपये लेना, उसका फॉर्म भरना, बच्चों को लगेगा कि हमने 50 रूपये दिए हैं, वो समय पर पहुंचेगा। सुबह 5 बजे पहुंचते हैं बाबा रामदेव जी के शिविर में, लोग इसके लिए नहीं पहुंचते हैं, उनका योग बहुत अच्छा लगता है, वो इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि 5000 रूपये चुकाए होते हैं, 5000 रूपये चुकाए, 10000 रूपये चुकाए, आप दौड़ेंगे, आप भागेंगे जगह के लिए, 5000 रूपये दिए हैं, फुकट नहीं है। वहां बैठना मूल्यवान हो गया, आपकी जगह मूल्यवान होगी, क्योंकि 5000 रूपये में वो स्क्वायर, 2 स्क्वायर फीट जमीन आपने खरीद ली 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आपने 5000 रूपये दे के खरीदी है, अब आप जहां भी बैठेंगे वो जगह मूल्यवान हो गई, वो समय मूल्यवान हो गया। और वो जो भी कहा जाएगा, अब वो जो भी कहा जाएगा वो आपके लिए बहुत मूल्यवान होगा। लेकिन जिसका कोई मूल्य चुकाया नहीं गया हो और आपको यूं आके बोला गया आओ, एयर कंडीशन जगह है, बहुत आराम की जगह है,